नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम सीप के मोती। हमारे जीवन का आधार है विचार, संस्कार, जीवन शैली और कार्य व्यवहार। इन चारों तत्वों के परिष्कार का प्रयास है हमारा कार्यक्रम सीप के मोती। प्रस्तुत है सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं।
माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर मेरी माँ।
माँ किसी की भी हो, उसका एहसास हमेशा एक सा होता है। माँ का होना हर दिल के लिए खास होता है। दुनिया की सारी तकलीफों से आराम है माँ, हमारी हर समस्या का समाधान है माँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं। सर पर माँ का हाथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। तमाम दुश्वारियों के बीच जैसे एक सुकून, एक छाया साथ चलती जाती है। गम की बदली जब सताती है तो दुआएं माँ की जगमगाती हैं किस्मत का सितारा बनकर। माँ जो कभी लोरी होती है, कभी सीख, कभी अटल सहारा, तो कभी अपराजेय हौसला होती है। हमारी हर तकलीफ, हर खुशी, हर जरूरत, हर चाहत जिस तक बिना कहे पहुंच जाती है वो माँ होती है। माँ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी अनुभूति शब्दातीत है, शब्दों से परे है। तो आज माँ की महिमा पर ही हम चर्चा करेंगे। और ये विषय हमने इसलिए चुना कि यूं तो हमारे दिन रात, हमारी जिंदगी ही माँ से है, कोई एक दिन माँ का हो नहीं सकता। फिर भी मई महीने का जो दूसरा रविवार होता है, उस दिन को हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मई के इस महीने में हम माँ को याद करें, उसकी महिमा को याद करें। तो आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष इतिहास विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। नमस्कार ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार सुनीता जी।
एक बहुत ही सुंदर और संवेदनशील विषय के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं अपने श्रोताओं के समक्ष। एक ऐसा विषय जो हर किसी से जुड़ा हुआ है और हर किसी के दिल के बहुत करीब है, माँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप माँ की महिमा पर कुछ कहें, उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं।
मिता जी, देखिए जैसा कि आपने भी बताया, देखा जाए तो माँ की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि जो बच्चे के लिए माँ कर सकती है वो कोई और जैसा करने का सोच भी नहीं सकता।
क्योंकि
9 माह तक उसको बच्चे को गर्भ में रखना और 9 माह तक पूरा केयर बरतना, पूरा का पूरा कि हाँ बच्चा मेरा स्वस्थ रहे, और जो कष्ट होते हैं ये किसी से छुपे नहीं है। और कहा भी जाता है कि इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता जब बच्चा पैदा होता है, उस समय जो माँ कष्ट देती है, लेकिन आप देखिए कि वो कष्ट उसके लिए कितना मिठास भरा कष्ट होता है। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और आप देखिए रात को कभी बिस्तर पे बच्चा गीला कर देता है तो माँ उसको गीले कर देती है, बच्चे को खुद गीले में लेट जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल,
जैसे रहता है ना कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देता है, ऐसे ही एक बच्चे को न केवल जन्म देती है अपितु उसको संस्कार भी देती है। वैसे भी सबसे पहली पाठशाला घर माना जाता है और सबसे पहली गुरु माँ को कहा जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल
सुनीता जी, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज हो सकती
है।
तो अब देखिए, हम जानते ही हैं कि जो मई का महीना होता है उसके दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में, मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
मदर्स डे सेलिब्रेशन तो जनरली हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन ये इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानना वास्तव में जरूरी भी है। आपको बता दें कि अमेरिका में एक महिला थी एन रीड जार्विस। ये महिला थी, ये इस बात को लेकर काफी चिंतित थी कि उस समय ऊंची शिशु मृत्यु दर थी और बाल मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही थी। तो उसका लगता कि ये इसमें कमी आना चाहिए। उन्होंने माओं को सुझाव दिया कि पूरे 365 दिन अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कैसे करें। ये जो समस्या से अमेरिका उस समय जूझ रहा था, उस समस्या से निजात पा सकते। उन्होंने ऐसा किया भी, आपको बता दें, और साथ में वो प्रार्थना भी करती थी कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए 365 दिन उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, चरित्र विकास के लिए, संस्कार डालने के लिए, बड़ा करने के लिए मेहनत कर रही है, उसको पाल पोस रही है, तो कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग अपनी माँ के प्रति सम्मान समर्पित करें।
बिल्कुल बिल्कुल।
और ये बात उन्होंने कई बार कही भी, और आप देखिए कि 9 मई 1905 को उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो बेटी थी एना जार्विस, रंजीत जार्विस की जो बेटी थी एना जार्विस, उन्होंने इसको अपना मिशन बना लिया कि मैं अपनी माँ की इस ख्वाहिश को पूरी करके रहूंगी। आप समझ सकते हैं कि जिस माँ ने सभी लोगों को पालने पोसने का तरीका बताया हो, तो उन्होंने अपने बच्चों की तरफ कितनी बेहतर ढंग से की होगी।
बिल्कुल।
एना जार्विस ने ये संकल्प ले लिया कि मैं निश्चित रूप से माँ की इच्छा पूरी करूंगी, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए माताओं द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए एक विशेष तरीके को अपनाने हेतु मातृ दिवस की कल्पना की। और मई 1908 में वह बेस्ट बनी वर्जीनिया के ग्राफ्टन के मेथोडिस्ट चर्च में उन्होंने पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया जिसमें हजारों लोग। और अब उनकी इच्छा थी कि इस दिवस को एक छुट्टी के रूप में राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल किया जाए अमेरिका की। और उनका यह कहना भी था कि अमेरिका में जो छुट्टियां होती है वो पुरुष उपलब्धियों के प्रति पक्षपात है, तो कम से कम एक छुट्टी अगर मातृ दिवस के रूप में डाल दी जाएगी तो कोई हर्ज नहीं होगा।
जी।
और इसके लिए उन्होंने बृहद पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया, पत्र लिखन अभियान चलाया, कई पत्र लेके राजनेताओं को, और धीरे धीरे यहाँ इतनी उनको सफलता मिल गई कि 1912 तक कई राज्यों में मदर्स डे वार्षिक अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा, लेकिन अभी भी कैलेंडर में शामिल नहीं था राष्ट्रीय अवकाश या नहीं था। अब यह था कि क्योंकि 9 मई को इनका माँ की मृत्यु हुई थी तो कई उससे प्रश्न थे, तो इनके जो प्रयासों से अंततः एक जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने 1914 में आधिकारिक तौर पर मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने का जो समझौता था उसका हस्ताक्षर कर दिए। और उसके वजह से शादी का ये 9 मई की बात हो रही है, दूसरा रविवार जो मई का पड़ेगा वो 9 मई के आसपास ही पड़ेगा। तो इस प्रकार 1914 से प्रति वर्ष मदर्स डे मई के दूसरे रविवार से मनाना आरंभ हो गया।
ये तो आपने बताया कि मदर्स डे किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और इसकी तिथि किस तरह से तय हुई। अच्छा, एक मन में मेरे प्रश्न है कि दुनिया भर में जो मदर्स डे है वो मनाने की परंपरा है, तो क्या हर देश में ये मई महीने के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है या कुछ देशों में अलग अलग तिथियां भी हैं?
नहीं नहीं सुनीता जी, ऐसा नहीं है, कई देश ऐसे हैं जो अलग अलग तिथि को ही मनाते हैं, लेकिन ये सबसे विशेष बात है कि मदर्स डे सेलिब्रेट सभी देशों में किया जाता है।
सभी देशों में किया जाता है।
अगर इतिहास देखें तो प्राचीन यूनान और रोमन में भी जो मातृ देवी थी उनकी रिया और साई बेलो, उनके सम्मान में मदरिंग डे मनाया जाता था। और अब हम रूस में देखें तो रूस में नवंबर का जो आखिरी रविवार रहता है उस दिन वो लोग वहाँ मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देश में जो राजा अगस्त थे उनकी जयंती के दिन 12 अगस्त को मदर्स डे मनाया जाता है।
जी।
और कुछ अरब देश ऐसे हैं जहाँ पे 21 मार्च को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और तक कि ब्रिटेन में भी मार्च के चौथे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, और फ्रांस में देखें तो मई का अंतिम रविवार जो होता है वो मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैक्सिको में 10 मई का दिन मदर्स डे के लिए नियत
है।
अलग अलग देशों में यह परंपरा
अलग अलग,
तारीखें अलग हो सकती हैं लेकिन भावना एक है, माँ के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो क्या महत्व आप देखते हैं इस दिवस को मनाने का ब्रजेश जी?
आपने जैसा कि आरंभ में भी कहा था कि मदर्स डे कोई एक दिन मनाने की चीज नहीं, ये तो सतत प्रतिदिन मनाया जाना चाहिए।
बिल्कुल।
यहाँ पर एक बात आती है जैसे कि उन्होंने भी कहा कि विशेष तरीके से अपनी माँ का सम्मान किया, जैसे बर्थडे होता है, जनरली किसी का भी बर्थडे होता है उस दिन एक विशेष दिन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी को विशेष डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। तो यही है कम से कम एक दिन ऐसा हो कि लोग अपनी माँ को जो उनके लिए बेहतर कर सकते हैं वो करें, उनको पूरा आराम दिया जावे अगर वो है तो, उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया जावे। हम बच्चे भी यह बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमारी माँ को पसंद क्या, तो उसकी पसंद की जो भी सारे सामान है, जो भी चीजें वो उसके सामने की जावे। तो अगर हम इसके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक ये उसका विशेष महत्व हो जाएगा, और हर माँ को कम से कम यह एहसास होगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो अपने बच्चों के लिए किया है, तो ऐसा नहीं है, इसको भी रिकग्निशन प्रॉपर वे में मिल रहा है।
जैसा कि आपने कहा ब्रजेश जी कि हर जो छोटा बच्चा होता है उसकी पहली गुरु माँ होती है, घर प्रथम पाठशाला होता है, तो मैं कुछ व्यक्तित्वों को याद करती हूँ और मुझे लगता है कि पहला नाम मेरे मन में छत्रपति शिवाजी का आता है, जिनके पूरे व्यक्तित्व के पीछे उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस पर आप अगर कुछ कहें कि किस तरह का प्रभाव शिवाजी महाराज पर पड़ा था उनकी माँ का, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा।
आपने जो बात की तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर पूरे इतिहास में हम देखते हैं तो शिवाजी का संबंध जो जीजाबाई के साथ था वो एक अद्भुत संबंध था, और जहां तक एक आदर्श माँ की बात करें तो जीजाबाई निश्चित रूप से एक आदर्श माँ थी। आपको बता दें कि जीजाबाई का स्वप्न था कि स्वतंत्र राज्य में उनकी आंखें बंद हो, यानी कि उस समय औरंगजेब का पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व था, और जीजाबाई चाहती थी कि कैसे भी करके हम परतंत्र ना रहे, इस परतंत्रता से हमें मुक्ति मिले, और उस परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यह स्वप्न देखा था। आपको बता दें कि जीजाबाई पर एक शिवाजी पर पुस्तक लिखी गई है डेविस किनकेट के द्वारा, द ग्रैंड ड्रैगन, उसमें उन्होंने शिवाजी के जन्म के पूर्व उनकी माँ ने एक अच्छे बेटे के जन्म के लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए उस पर विस्तार से बताता है। तो वो बताते हैं सुनीता जी कि जीजाबाई शास्त्रों में जो भी संस्कार गर्भाधान संस्कार के तहत दिए गए हैं वो पूरे संस्कार पूरे मनोयोग के साथ वो करती थी। स्वप्न में भी उनको अपने बेटे की ख्याति के किस्से दिखाई देते थे, मतलब जो अचेतन मन की शक्ति की हम बात करते हैं कि जैसा हम अचेतन मन में सोचते कहीं ना कहीं उस तरह का चीजें सामने आती है। तो शिवाजी अभी पैदा है, उनको तो ये पता भी नहीं था कि मेरे बेटा होगा कि बेटी, लेकिन वो जो स्वप्न देखती थी कि मेरा बेटा इस धरती को स्वतंत्र कर पाएगा, स्वतंत्रता की बेड़ी कर देगा, तो उनको ख्वाबों में इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते थे। और आप देखिए कि जब शिवाजी का जन्म हुआ और उनका जो पालन पोषण तो बहुत बेहतर ढंग से हुआ ही, और उसमें क्या होता था, उस समय एक नियम था कि शिशु के कौशल की जांच संस्कार किया जाता था, कि शिशु के सामने कई चीजें रखी जाती और शिशु जिस चीज को पकड़ लेता था तो यह माना जाता था कि इसका इस फील्ड में रुचि और इसी फील्ड में उसको आगे जाने दिया जा रहा है। क्योंकि जीजाबाई तो स्पष्टता वो तो एक योद्धा बनाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि ये महावीर बने और ये प्रतंत्रता की बेड़ियों को काटे। और आप देखिए उनकी जो कौशलता की जांच के लिए कई खिलौने रखे गए, तो उन्होंने शिवाजी ने जो संकेत किया वो तलवार की ओर किया, और जैसे ही ये उन्होंने संकेत किया माँ जीजाबाई को उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और उनको अपना स्वप्न साकार होता नजर आया। और कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, और निश्चित रूप से उनको पालने में ही पूत के पांव दिखाई दे रहे। अब आप देखिए कि शिवाजी उस समय मुगलों से विरोध लिए हुए थे, और मुगल के उससे वो शाहजी बीजापुर भाग गए थे। अब वो शाहजी को पकड़ना चाहते थे मुगल, तो उनको लगा मुगलों को कि अगर हम इनके पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी को पकड़ ले तो शाहजी को निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो उन्होंने यह प्रयास किए तो उनको जीजाबाई उनके पकड़ में आ गए। और शिवाजी फिर भी छोटे थे लेकिन उनको जीजाबाई ने कुछ इस तरह का किया कि शिवाजी तो वो नहीं पकड़ पाए। उनके कुछ जो भक्त थे जीजाबाई के मातक थे वो उनको शिवाजी को लेकर चले गए। और जीजाबाई आप सोचती है कि ये लगभग शिवाजी की उम्र 7 वर्ष रही होगी, तो 7 से 10 यानी 3 वर्ष जीजाबाई मुगलों की नजरबंदी में रहे और शाहजी बीजापुर में थे। तो अब आप देखिए कि एक माँ का हृदय देखिए कि उनको ये पता था कि मेरा बेटा कैसे, लेकिन उनको विश्वास था कि ठीक है ये जो समय है निश्चित रूप से मेरा बेटा धैर्य भी सीख रहा होगा। यहाँ पर उसको यह भी समझ में आ गया होगा कि जीवन क्या है और बचपन से वो षड्यंत्रों को समझना शुरू कर दिया हुआ है। और आप देखिए कि जीजाबाई ने 3 साल तक बहुत धैर्य के साथ परिचय दिया धैर्य का, और अंततः जब वहां से वो निकल कर आई तो शिवाजी को जीजाबाई से सबसे बड़ा जो सीख मिली वो धैर्य का परिचय मिला। और जीजाबाई को उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वहां के षड्यंत्रों से कैसे उनका विजय प्राप्त की वो भी उन्होंने बेहतर ढंग से समझाया। और आप देखिए ने धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था तो उनको याद था मेरी माँ भी एक प्रकार की हुई थी, माँ ने जिस तरह धैर्य रखा तो उसी धैर्य का पालन शिवाजी ने किया, अंततः वहां से वो बच गए।
एक माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी बच्चे को बना देने में, उसके व्यक्तित्व को बनाने में। और यही मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है ब्रजेश जी, एक महान वैज्ञानिक हुए हैं थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनके बचपन का एक प्रसंग है कि एक दिन वो स्कूल से घर आए और एक चिट्ठी अपने माँ को दी और कहा कि माँ मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने ये चिट्ठी मुझे दी है और कहा कि ये केवल अपनी माँ को ही देना, तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे बताओ तो इसमें क्या लिखा है, मुझे बड़ी उत्सुकता है कि मेरे टीचर ने क्या लिखा है। तो माँ ने वो चिट्ठी खोली और माँ की आँखें कुछ पल के लिए रुकी, फिर वो तेज आवाज़ में पत्र को पढ़ने लगी। और जो उन्होंने पढ़ा वो इस तरह से था कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है, ये विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है, उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं और हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। ये सुनने के बाद जो बालक एडिसन था उसे स्वयं पर गर्व हुआ और माँ की देखरेख में वो पढ़ाई करने लगे। कुछ समय बाद माँ की मृत्यु हुई, वो एक महान वैज्ञानिक भी बन गए और समय बीत गया। एक दिन वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो आलमारी में से उन्हें वही पुराना पत्र मिला। उन्होंने जब उस पत्र को खोला तो उस पत्र में जो लिखा था उसे पढ़कर वो हतप्रभ रह गए। उनके शिक्षक ने लिखा था उनकी माँ को कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब इस स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। तो ऐसे प्रसंग भी हैं जिनको हम जब सुनते हैं पढ़ते हैं जानते हैं तो मन भर जाता है आदर के साथ किसी भी माँ के लिए। माँ कहीं भी हो इस दुनिया में वो ऐसी ही होती है, अपने बच्चे का सहारा होती है। अब मुझे एक व्यक्तित्व और याद आ रहे हैं, महात्मा गांधी, जिन पर उनकी माँ का बहुत गहरा प्रभाव था। तो हम चाहते हैं ब्रजेश जी कि आप इस पर भी प्रकाश डालें।
आपको बता दें कि महात्मा गांधी की जो माँ थी पुतलीबाई, और महात्मा गांधी ने उनसे बहुत कुछ सीखा था बचपन में ही। वो एक श्री कृष्ण को मानती थी, प्रणामी संप्रदाय को मानती थी और प्रणामी संप्रदाय में भी सद्भाव संभाव की बात होती थी। मतलब देखा जाए तो उनको जो धर्म की वास्तविक शिक्षा मिली वो अपनी माँ से ही मिली और उनकी माँ कितनी मदद करती थी। आपको बता दें कि वो बिना पूजा पाठ के कभी भोजन नहीं करते थे और चतुर्मुख जो रहता है उसमें हमेशा व्रत करती थी और उस समय बारिश रहती है और उनका एक प्रण था कि मैं सूर्य देव के दर्शन करके भोजन ग्रहण करूंगी। तो गांधी जी बाहर जाते थे और इंतजार करते थे कि कब सूर्य निकले, और जैसे सूर्य निकलता था तो गांधी जी बड़े प्रसन्न होकर लौट के आते थे, मामा सूर्य निकल गया, और जल्दी से माँ, और जब माँ आती थी तो सूर्य देव फिर बादलों में छुप जाते थे और माँ कहती थी शायद आज मेरी किस्ती में भोजन नहीं है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बीमारी की चिंता नहीं करती थी, कई बार बीमार होती थी लेकिन परवाह नहीं करती थी, और 2-3 दिन का उपवास तो उसके लिए मामूली बात थी, 3-4-5-6 दिन भी उपवास ही रह सकती थी। तो आप देखिए कि जो धैर्य था और जो धर्म की शिक्षा थी, और आप देखिए कि गांधी जी की पूरी जीवनी आगे हम देखते हैं, गांधी जी का कथित देखते हैं, गांधी जी कोई भी बात जब अंग्रेजों की उनको पसंद नहीं आती थी तो आमरण अनशन शुरू कर देते थे।
दक्षिण प्रदेश, तो वहां से सबसे बड़ा संस्कार तुमको यही मिलाता है कि भूखा रहा जा सकता है। तो अंग्रेज भी बड़े परेशान हो जाते थे कि ये मतलब कितने दिन, और अंग्रेज दुबले पतले बैठे थे, अंग्रेज धन अलग रखता था, कहीं कुछ हो न जाए तो उनकी बात मान ली जाती थी। तो उनके जो संस्कार थे और जो विदेश जा रहे थे, विलायत जा रहे थे, सब माने उनसे वादा लिया था कि वहां जाकर तुम मांस मछली का सेवन नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वहां लोग वहां की जलवायु विकास ऐसा करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उसको बिल्कुल उनकी बात को पूरा किया, और बाद में उन्होंने एक किताब लिखी है गीता मार्ग, और उन्होंने कहा कि मैं जब परेशान होता था तो माँ मेरी रक्षा करती थी, लेकिन आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं गीता को माँ इसलिए कहता हूँ कि इसके कई श्लोक हैं, जब भी मुझे कोई समस्या आती है मैं जैसे ही अपनी गीता माता के पास जाता हूँ, जो भी श्लोक टटोलता हूँ उस श्लोक में मेरी शंका का, मेरी परेशानी का समाधान मिल जाता है। तो उन्होंने गीता माता किताब का नाम ही रखा।
माँ का जो प्रभाव है वो हर बच्चे पर इसी तरह का होता है, माँ होती है तो एक सहारा होता है, एक छाया होती है और बहुत ताकत होती है। आप कितने भी बड़े हो जाएं ब्रजेश जी, उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंच जाएं, लेकिन माँ के सामने आकर हर व्यक्ति बच्चा ही हो जाता है, और कितने भी सुख हों माँ का जो आंचल है, उसकी जो छाया है, उसमें जो सुरक्षा है, वो कहीं और महसूस होती नहीं है। अब देखिए इसी बिंदु पर मुझे माता यशोदा की याद आ रही है कि मातृत्व का एक अद्भुत पर्याय है माता यशोदा। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे, उनसे पैदा हुए थे वो, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया, यशोदा नंदन वो कहलाते हैं, और उनका प्रेम तो जग जाहिर है, विख्यात है कितना गहरा प्रेम उनको कृष्ण से था, उनकी आत्मा उनका प्राण कृष्ण में बसते थे उनके। लेकिन जब उन्हीं कृष्ण को मथुरा से जाने का समय आया तो माता यशोदा ने अपने प्रेम की दुहाई देकर उन्हें रोका नहीं, उनके जो कर्तव्य का मार्ग था उसे प्रशस्त किया, जाने दिया। ये भी माँ होती है कि इतना प्रेम है, लेकिन कर्तव्य पथ पर जब बेटा जा रहा होता है तो वो अपने प्रेम को रास्ते का रोड़ा नहीं बनाती। और इसी तरह से पन्ना धाय को हम याद कर लें, अगर हम माँ की महिमा की बात कर रहे हैं, अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह की उन्होंने रक्षा की। हम जानते ही हैं कि बनवीर जो जिसने चित्तौड़ का शासक बनने के लिए महाराणा की हत्या की और फिर उदय सिंह को मारने के लिए वो आया, और पन्ना धाय के ऊपर ये दायित्व था कि वो रक्षा करें उदय सिंह की, तो उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ लिटा दिया और इशारा किया कि यही उदय सिंह हैं, और उनकी हत्या हुई और वो रो भी नहीं सकी। एक ऐसी माँ जो अपने पुत्र की मृत्यु पर रो नहीं सकी, वो उदय सिंह की चिंता में, उसके पालने पोसने में उसका पूरा ध्यान था। तो ऐसी भी माएँ हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति, ऐसी भी माएँ हैं। कितना बड़ा साहस होता है किसी माँ के भीतर, कैसी ताकत होती है कि इस तरह का भी हमारे पास सुनने के लिए प्रसंग है। ब्रजेश जी, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि मदर्स डे लोग मनाते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से मनाया जाए?
जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ठीक है, मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को होता है, हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, तो हमें तो प्रतिदिन मदर्स डे मनाना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल,
सम्मान तो हमें प्रतिदिन रखना है, लेकिन क्योंकि मदर्स डे है और 12 मई जो आपका मई का दूसरा रविवार है उसको नियत किया गया है, तो कम से कम बच्चों को ये प्रण करना चाहिए कि एक साल हम इतनी मेहनत करें कि माँ के जो भी स्वप्न है, छोटे छोटे जो स्वप्न है, वो कम से कम हर वर्ष कोई ना कोई एक स्वप्न पूरा करते रहे। और अगर हमने ये प्रण कर लिया तो निश्चित रूप से, जैसे जीजाबाई का स्वप्न था कि परतंत्रराय की बेड़ियों को शिवाजी तोड़े, तो देखिए माँ के स्वप्न सिर्फ माँ के अपने स्वार्थ के लिए किए गए स्वप्न नहीं होते, माँ के स्वप्न राष्ट्र की प्रगति के लिए भी स्वप्न होते हैं। बहुत सी माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बने, बहुत सी माँ चाहती है मेरा बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये एहसास है और आप अगर उनके सच्चे पुत्र हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ का वास्तविक स्वप्न क्या है। तो आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए दर पतक हो जाइए, और जब भी मदर्स डे आए, मई के जो दूसरा रविवार आए, उस दिन पूरे साल को एनालाइज कीजिए, क्या माँ के स्वप्न को पूरा करने की ओर मेरा कदम बढ़ाया। क्योंकि मुझे भी जो याद आता है, मेरा जो बचपन था वो बचपन, आज भी लोग कहते हैं कि बचपन में बहुत शैतान थे, पढ़ने में भी टीचर्स भी परेशान रहते थे, और मेरी माँ भी कहीं जाती थी अपनी बहन के, अपनी जो बड़ी दी मौसी है हमारी, उनके जाती थी, तो मेरी शैतानी से वो परेशान होती थी, कई बार कहती के मेरे महत्व को मतलब कहा जाता था कि मुझे उसको अपने साथ नहीं लाना कभी। तो जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, और एक दिन मैं बैठा था और मुझे याद आया कि मैंने जो देखा कि भाई मेरे को बनाने वाला कौन है, क्योंकि मैं जो कभी पढ़ने के लिए टीचर परेशान रहते थे आज मैं अपनी टेबल से नहीं उठ पा रहा, तो ये हाँ ऐसा हुआ। तो मुझे मेरी माँ की याद आई और मैंने उन पर कुछ पंक्तियां लिखी, मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा।
जी जी जरूर सर।
उसका जो शीर्षक है, शब्द तो वही है बस अर्थ बदल गया है। मेरी शैतानियां बनती थी लोगों की परेशानियां, और सुनती थी तू धन है तू माँ, तूने कैसा बेटा जना है, मिट्टी था मैं तूने घड़ा ऐसे बनाया, संस्कारों से तूने फिर इसको सजाया, ख्याति ने मेरी फिर तुझको सुनाया, धन है तू माँ तूने कैसा बेटा जना है। सुनकर यह जुमला पहले भी तू रोई थी, आंखों में आंसू तब थे दुख के, सुनकर ये जुमला अब भी तू रोती है, अंतर है इतना है ये आंसू खुशी के, जमाने का देखो कैसा रंग बदल गया है, शब्द तो वही है बस अर्थ बदल गया है।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां आपकी। और देखिए, आपकी इसी कविता से मुझे याद हो आया कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो भी कहा करते थे कि उनकी जो सफलता है उसके पीछे उनकी माँ की बहुत मेहनत है, क्योंकि सुबह 4 बजे उनके शिक्षक, जो शिक्षक उनको निशुल्क शिक्षा देते थे, उनका कहना था कि सुबह 4 बजे नहा कर मेरे पास आओ। तो वो माँ सुबह उठती थी और सुबह 4 बजे उन्हें नहलाकर उस शिक्षक तक पहुँचाती थी जो उन्हें निशुल्क शिक्षा देने वाले हैं। और रात में चूंकि अंधेरा हो जाता था, वो पढ़ नहीं पाते थे, तो बहुत मुश्किलों से उन्होंने पैसा जुटाया, उनकी माँ ने, आशी अम्मा ने, और उन्होंने एक लैम्प खरीद के दिया ताकि वो 11 बजे रात तक पढ़ाई कर सकें। तो वो भी अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने एक कविता लिखी है, मेरी माँ, वो मैं चाहती हूँ कि अपने श्रोताओं तक पहुँचाऊँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कविता मेरी माँ, वो लिखते हैं कि समंदर की लहरें सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वो छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम पहुंचते किरणों से पहले, कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक, स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने चलते पलते साये में तेरे, दिन में स्कूल शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्कत दिक्कतें कठिनाई, तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें, जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर, दिया तूने हमेशा दया का दान, याद है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र, पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में अधमुदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर, घुटनों के बल बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं, तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा, तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति, निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। तो ये कविता APJ अब्दुल कलाम की पढ़ते हुए मेरा गला भर आया। माँ को याद करके ब्रजेश जी, हर किसी का यही हाल होता है, अपनी माँ याद आ जाती हैं और मन भावनाओं से भर जाता है। तो मातृ दिवस जो है, मदर्स डे जो है, वो एक दिन का त्यौहार नहीं है, पल पल माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हमें। और हमारी तो संस्कृति ही कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो हम तो ईश्वर की तरह देखते ही हैं माता पिता को, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। तो ब्रजेश जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, और मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को हम बहुत कुछ बता पाए, और जो हम चाह रहे थे कि मई के इस महीने में माँ की महिमा पर चर्चा हो, आपके माध्यम से बहुत कुछ उन तक पहुँचा। बहुत सुंदर चर्चा रही, आज आप उपस्थित हुए, आपका बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, आज माँ की महिमा पर हमने चर्चा की। किसी कवि ने कहा है कि मैंने माँ को देखा है तन और मन के बीच बहती हुई किसी नदी की तरह, मन के किनारे पर निपट अकेले और तन के किनारे पर किसी गाय की तरह बंधे हुए। मैंने माँ को देखा है जाड़ा गर्मी बरसात में सतत खड़े किसी पेड़ की तरह। मैंने माँ को देखा है घड़ी की तरह चलते हुए, दिए की तरह जलते हुए, फूलों की तरह महकते हुए। मैंने माँ को देखा है रात की तरह जागते हुए, बस नहीं देखा तो खुद के लिए लड़ते हुए। मैंने नहीं देखा माँ को अपने लिए जीते हुए। तो श्रोताओं, माँ ऐसी ही होती हैं, इसलिए अपनी माँ का ख्याल रखिए। वो खुद के लिए कभी नहीं जीना चाहेगी, वो आपके लिए जीती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी ज़रूरतों को समझिए बिना कहे, जैसे वो समझ जाती थी बिना कहे आपकी ज़रूरतें, और उसे हमेशा खुश रखिए। उसकी मुस्कान ही इस संसार की सबसे बड़ी दुआ है।
माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।